berat, umur berat.
Good.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنوب ویشنو بادا پرمون سبالی براز بیچاری آشت کرس و دیسی بکتی سی دھان تو سر سر بیٹھا کر مارا راما چاری سی بھاری داوش ٹھاکر کی انانت بڑی ویشنو بگرن لکی جسی رادھا گرگاری بھگوان کی جائی جگنات بڑا جائی سبھد راجی کی سموی سبھست بھرن لکی شریل پرب پاد کی نیتائی گور پرمان اوم نمو بھگوتی واسودیوان ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् जयाद्मदीरये नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टके श्रीमद्भागवतम पढ़ेंगे कैंटो 9 अध्याय 20 श्लोक 16 पढ़ेंगे। इस श्लोक मेरे पीछे कृपा करके बोलिए आप लोग। ओम इत्युक्ते यथा धर्मम् उपये मे शकुन्तलाम् गंधर्व विधा विधिना राजा देश काल विधान दी ओम इति उक्ते यथा धर्मम् इपोपये मे शकुन्तला गंधर्व विधान गंधर्व विधिना राजा देश काल विधि नीतियुक्ते यथा धर्मम् उपये मे शकुन्तला गंधर्व विधिना राजा देश काल विधान लोगों के शब्दार्थ ऐसे हैं मेरे पीछे बोली ओम इति उक्ते वैदिक प्रणव का उच्चारण करके भगवान को विवाह के साक्षी रूप में आह्वान करते हुए यथा धर्मम धार्मिक नियम के अनुकूल, क्योंकि सामान्य धार्मिक विवाहों में भी नारायण साक्षी बनते हैं। उपये में विवाह कर लिया शकुंतलम शकुंतला से गंधर्व विधिना गंधर्व विधि से राजा महाराज दुष्मंत ने देश काल विधान भी समय स्थान तथा लक्ष्य के अनुसार कर्तव्य से पुण्यता अवगत श्री राधा गिरिधर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्री लघुपाद की ट्रांसलेशन एंड परपड़ी देवानगर श्री लघुपाद जी के द्वारा श्री लघुपाद की। जब शकुंतला महाराज दुष्मंत के प्रस्ताव पर मौन रही तो सहमति पूर्ण हो गई। तब विवाह के नियम को जानने वाले राजा ने तुरंत ही वैदिक प्रणव का उच्चारण किया, जैसा कि गंधर्व ने विवाह के अवसर पर किया। गंधर्वों में विवाह के अवसर पर किया जाता है। तात्पर्य, ओंकार या प्रणव भगवान का शब्द रूप है। भगवद्गीता में कहा गया है कि अ ओ में अ ओ म, ये तीन अक्षर मिलकर ओम द्वारा भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। धार्मिक सिद्धांतों का अभिप्राय भगवान कृष्ण के आशीर्वाद तथा अनुग्रह का आह्वान करना है, क्योंकि भगवद्गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो कामेच्छाएं धर्म के विरुद्ध नहीं है उनमें और स्वयं उपस्थित रहते हैं। विधिना शब्द का अर्थ धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार, वैदिक संस्कृति में धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार स्त्री तथा पुरुष के संयोग की अनुमति है। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार विवाह करने की अनुमति प्रदान करते हैं, किंतु मित्र के रूप में स्त्रियों तथा पुरुषों का संयोग अधार्मिक है और इसकी अनुमति नहीं दी जाती। ओम ज्ञान अतिमिरांगस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूषणे स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथ नितं तं सजीवम् साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता सिद्धिशाखानितंस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्ते। सतकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम महाप्राण कि जो ये कथा दुष्मंत महाराज और शकुंतला की जो एक प्रकार के कहेंगे लव स्टोरी, भौतिक जगत में एक कमन है, साधारण है। तो ये जो दुष्मंत महाराज और शकुंतला का विवाह जो कथा चल रही है, भले हमें लगे कि बात सामान्य है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सामान्य नहीं है। क्योंकि भागवत में जो भी चरित्र आए हुए हैं वो चरित्र कोई सामान्य नहीं है। तो भागवत को हमें समझना है तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है भागवत तो पढ़ो जाइए भागवत स्थान। और चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं दिखाए, वो जब भागवत श्रवण करते थे स्वयं जाकर के गदाधर पंडित से भागवत श्रवण करते थे और रामानंद राय से कथा सुनते थे। उसी प्रकार महाभागवत के आश्रय लेकर भक्तों के साथ में होकर जब हम भागवत श्रवण करते हैं तो ये भागवत के द्वारा हमें आत्म साक्षात्कार के बल को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देखते हैं आज के प्रसंग में ओम इति उक्ते, ओम इति उक्ते, ओम जो है, ओम जो शब्द है ये भगवान का निर्विशेष प्रणव ध्वनि है। हरे कृष्ण महामंत्र जो है उनका स्वरूप है, जो साकार रूप है, ओम का जो साकार रूप है वो हरे कृष्ण महामंत्र है। और ये महामंत्र को ये कोई यदि व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण नहीं कर पाता तो ओम भी उच्चारण करेगा तो ओम से ही उस हरे कृष्ण महामंत्र का जो रूप है, हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने का जो फल है वो ओम मंत्र उच्चारण करने से वो प्राप्त हो व्यक्ति को हो सकता है। क्योंकि ओम जो है भगवान का वेदों का पहले ध्वनि है, वेदों का जो आवाज है ये शुरुआत होती है ओम से। तो ये ओम को यदि हमें लेंगे हमारे जीवन में भगवत साक्षात्कार के लिए इसमें कोई त्रुटि नहीं है। कलयुग के लिए साब्यस्त किया गया हरे कृष्ण महामंत्र, किंतु पहले ओम हमें भी जब कोई प्रणाम मंत्र उच्चारण करते हैं पहले ओम को उच्चारण करते हैं। तो भगवद्गीता में यही बात को ये ओम मंत्र के ऊपर ज्यादा बल प्रदान किया जाता है। ऐसे भी कोई भी शुभ कार्य में देखो पहले ओम को रखा जाता है। तो यहाँ पर जो दुष्मंत राजा थे तो वो पहले एक ओम उच्चारण करके वो शकुंतला के साथ वो विवाह किए। वहां पर बात होती है दुष्मंत महाराज के जो विवाह है एक साधारण जैसे लगती है, बहुत ही संसार के कमन चीज जैसे बोध होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है दुष्मंत महाराज जब शकुंतला का विवाह किए तो कामुकता बस होकर के वो विवाह नहीं किए, वो कामुक होकर के वो विवाह नहीं हुआ उनका। हाँ, क्योंकि उनका ये बात से पता चलती है वो वैदिक मंत्रों का आश्रय लिए, भगवान को बीच में रखते हुए वो शकुंतला का पाणी ग्रहण किए, वो विवाह किए। और वहां पर जब पहले समय में हमें देखते थे जो विवाह होता था वो समय एक पुरोहितों की आवश्यकता होता था और वो वहां पर कोई पुरोहित नहीं थे। हाँ, पुरोहित जो होता था, पुरोहित मतलब जो हमारे शरीर रूप पूर्व का हित कर, जो हित करता है वो पुरोहित है। हाँ, तो पुरोहित क्या करता है विवाह के समय स्त्री पुरुष को, स्त्री और पुरुष को एक स्पिरिचुअल बंधन में बांध देता है। स्त्री पुरुष का जो संबंध है भगवान को प्राप्त करने के लिए एक स्पिरिचुअल बंधन है। जिस प्रकार गुरु और शिष्य के भीतर एक स्पिरिचुअल बंधन होती है जो बंधन को तोड़ा नहीं जा सकता, आजकल के तो और कुछ है जो तो, लेकिन ये जो स्त्री पुरुष का संबंध विवाह समय होती है वो आजकल के तो और वो कामुकता के होने के कारण वो विवाह के बाद ही वो डिवोर्स हो जाती है। लेकिन स्त्री पुरुष का जो संबंध है वो गुरु शिष्य के संबंध है, तो भगवत प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ी सख्त मार्ग है। ये कोई बाजार का सौदा नहीं, बाजार का कोई सब्जी नहीं है कि हाँ विवाह किए फिर उनको दो दिन के बाद छोड़ दें, ये छोड़ने की चीज नहीं है। ये जो गुरु शिष्य की संबंध की पुरुष स्त्री पति पत्नी के भीतर जो संबंध है ये कोई छोड़ने की संबंध नहीं है। हाँ, तो पुरोहित क्या करता है ना, वहां पर अग्नि जो है भगवान का, भगवान अपनी विभूति में बताते हैं मैं अग्नि जो है मैं ही अग्नि हूं। और वहां पर एक यहाँ पर दुष्मंत और शकुंतला का विवाह, तो स्वयं दुष्मंत जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं भगवान को बीच में रख करके, मैं भगवान को बीच में रख करके मैं शकुंतला को ग्रहण किया। हाँ, आजकल के किसको बीच में रखा जाता है, कोर्ट कचहरी नहीं तो लॉयर को नहीं तो कोर्ट कचहरी को बीच में रख करके विवाह होती है, कागज कलम में विवाह होती है। पहले समय कागज कलम एक वहां पर लहर नहीं होता था, वहां पर ब्राह्मण वैष्णव होते थे और वहां पर वेद मंत्र का आश्रय लिया जाता था। अब वेद मंत्र पद्धति के वैदिक विधि विधान के वैदिक मंत्र उच्चारण करते हुए जो कार्य होता था वो बड़े शुभ होता था। हाँ अभी हाँ, और सब ये सब चीजें बकवास, ये सब सारी चीज बकवास बन गया है, वो सब चीज नहीं होती है। और जब वेद मंत्रों के आश्रय लेकर के जो कार्य होती है तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त करने के लिए हमारे भीतर की हिम्मत होती है। और वहां पर पुरोहित का कार्य क्या होता है, हाँ तो पुरुष को और अग्नि जो भगवान का रूप है अग्नि बीच में रहता है, अग्नि जो वहां पर जो अग्नि है तो बीच भगवान का रूप भगवान होते हैं। और पुरोहित क्या करता है, अग्नि को साक्षी बना करके मतलब भगवान को साक्षी बना करके एक बद्ध जीव को एक श्रेय व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति के हाथ में अर्पण करता है। मतलब पुरुष को वहां पर गुरु का शक्ति प्रदान किया जाता है, अग्नि को साक्षी रख करके पुरोहित क्या करता है ना ये पुरुष को गुरु का शक्ति प्रदान करता है। तब वहां पर वो गुरु क्या करता है, अपने आश्रित को वो भगवत साक्षात्कार कराता है। तो वहां पर यही बात है कि जब दुष्मंत महाराज शकुंतला को देखें और वो पता लगा लिया, उनको अनुभव हुआ तो ये कोई मुनि कन्या नहीं है, वो तो कोई क्षत्रिय का कन्या है। यहाँ से पता चलती है दुष्मंत महाराज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये बहुत बड़े भक्त हैं। अब भक्तों को क्या होती है ना, जो लोग भक्त होते हैं उनको स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के साथ साथ भौतिक रियलाइजेशन भी हो जाती है। जो भक्त होते हैं उनको आध्यात्मिक अनुभव हो जाने मात्र से उनको भौतिक अनुभव भी हो जाता है। और भागवती की कथा कौन सुनाते हैं, एक ब्रह्मचारी, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी भागवत की कथा सुनते हैं सुना रहे हैं, और एक गृहस्थ परीक्षित महाराज बैठ करके सुना रहे हैं। और वो जो भागवत की कथा सुना रहे हैं, भागवत भागवत के भीतर है क्या, एक गृहस्थ जीवन को नकारना है और एक गृहस्थ जीवन एक कामुक जीवन इंद्रिय तृप्ति जो वो चीजों ये सारी चीजों से एक ब्रह्मचारी को दूर रहना है। हाँ भले है कि ब्रह्मचारी गृहस्थ जीवन के कोई ख्याल नहीं है कोई ये नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वो गृहस्थ जीवन के सारा हिसाब किताब उरकता है। उनको पता होता है कि गृहस्थ में क्या चलती है, एक गृहस्थ के भीतर क्या चलती है, एक गृहस्थ जीवन में क्या होती है, वो सारे खबर ये आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा एक ब्रह्मचारी को पता हो जाता है। तो ठीक वही सुखदेव गोस्वामी ये सारे रिपोर्ट सारे बयान परीक्षित महाराज को कह रहे हैं और एक गृहस्थ होकर के सुन रहे हैं। तो कहने के अर्थ ये है जब एक भक्त को स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक अनुभव हो जाता है तो फिर वो दोनों को कंपेयर करता है, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों को कंपेयर करके तुलना करके फिर वो परमहंस बन जाता है। फिर वो निकृष्ट चीज को छोड़ देता है और सार वस्तु को मतलब भक्ति को अपना लेता है। तो और एक बात ये श्लोकों में दिख पड़ती है कि विधि विधान विधि, और ऐसे ही कि आजकल के जो सड़क में स्त्रियां घूमती है सड़क में पुरुष घूमता है वो कामुक्त होकर वो अपने अपने पसंद कर लेते हैं, फिर वो कामुकता के ऊपर वो चीजें सब आधारित है। लेकिन यहाँ पर दुष्मंत महाराज शकुंतला को जब लिए अपने जीवन में ग्रहण किए तो कोई कामुकता की सवाल नहीं है, प्रश्न नहीं है। यहाँ पर वो कह रहे हैं विधि विधान, विधि होती है विधान होती है, मतलब यहाँ पर दुष्मंत महाराज विवाह जीवन का क्या लक्ष्य है, विवाह जीवन का क्या कर्तव्य होती है, यहाँ पर बताया जाता है कि देश काल विधान विधि, मतलब लक्ष्य और कर्तव्य यहाँ पर सामने ये चीज को रखें देखें। ये जो विवाह है वो तो विवाह का लक्ष्य क्या है, अरे विवाह का कर्तव्य क्या है, आजकल के विवाह का मकसद क्या है, अपने शारीरिक समस्या को अपने शारीरिक जो मतलब भोग है अपने इंद्रिय तृप्ति को पूरा करना, यही आजकल के विवाह के आधार है। लेकिन पहले समय में जो विवाह होती थी वो विवाह का असली जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति वो चीजों को जानते थे। हाँ और स्त्री जो होती थी वो आध्यात्मिक दृष्टि को खोया हुआ होती है, स्त्रियां जो होती है वो आध्यात्मिक दृष्टि को खोया हुआ होती है, और पुरुष क्या करता है, जिस प्रकार गुरु अपने दिव्य दृष्टि प्रदान करके शिष्य को भगवत दर्शन कराता है, ठीक उसी प्रकार पुरुष गुरु का भार, गुरु का दायित्व लेकर के वो आध्यात्म अपने स्त्री को आध्यात्मिक साक्षात्कार का शक्ति प्रदान करता है। पुरुष का यहाँ पर कर्तव्य होता है कि अपने आश्रितों को, अपने स्त्री को आध्यात्मिक साक्षात्कार का शक्ति वो प्रदान करे, वो शक्ति को प्रदान दें। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भले ये कथा एक कहानी के जैसे ये कहानी ऐसे ऐसे आगे चल करके हमें देखेंगे अगले स्कंद में, दसवें स्कंद में भगवान ने स्वयं भगवान किडनैप कर लेते हैं, रुक्मिणी को किडनैप करते हैं। तो ये बात बड़े ही ये सब लव स्टोरी है, लव और किडनैप के लिए रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम व्यापार में देखेंगे रुक्मिणी किस प्रकार के लव लेटर लिखती है भगवान श्री कृष्ण के पास, आ जाओ मुझे उठा के मुझे किडनैप करके ले जाओ, ये सब बात बड़ी ही अजब लगती है। लेकिन आश्रय लेकर के यदि हमें आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय लेकर के उसको हमें समझ पाएंगे। और एक बार हमारे ब्रह्मचारी क्लास में कमलोचन प्रभु बता रहे थे ब्रह्मचारियों को यदि कोई लेटर पढ़ना है, एक ही लव लेटर पढ़ना है, वो है रुक्मिणी और कृष्ण का। हाँ, ब्रह्मचारी लोग यही लव लेटर को पढ़ सकते हैं, बाकी नहीं। तो यहाँ पर यही बात को हमें, ये चीज को ध्यान में रखते हुए शकुंतला और दुष्मंत का लव स्टोरी को हमें सुनेंगे तो फिर उसमें कोई बाधा नहीं है भक्ति मार्ग में। तो प्रभुपाद भी ये बात बताते हैं आध्यात्मिक एक चीज बता, धार्मिक सिद्धांतों का अभिप्राय भगवान श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना। तो पहले ये बात होती है धर्म क्या है, ये बात को साक्षात जमराज जी बताते हैं। धर्म साक्षात, धर्म मतलब भगवान का वचन, भगवान ने जो कहे हैं वही धर्म है। और जमराज जी ये बात को कहते हैं धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम, और कोई धर्म क्या है और कोई बना नहीं सकता। आजकल के मन जो व्यक्ति जो चाहता है वो अपना धर्म मान लेता है, ऐसा नहीं होता है। धर्म मतलब पुरुष एक जीव और भगवान के भीतर जो संबंध को खोज लेना, जीव और भगवान के भीतर जो संबंध है इस संबंध को जान लेना, यही असल धर्म है। और यही जीव और भगवान के भीतर जो इस संबंध ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए सारे वेदों की, सारे शास्त्रों की सृष्टि है। हमें ये सारे शास्त्र, सारे भागवत, ये सारे शास्त्रों का अध्ययन करने की मतलब क्या है, भगवान के साथ हमारे जो हुए संबंध को उसको उत्पन्न करना, जागृत करने के लिए, यही तो इसीलिए तो मैं शास्त्र का सहारा ले रहे हैं। सारे शास्त्र का यही इच्छा है, ये अभिप्राय है कि पढ़ने की ये उद्देश्य है, भगवान के साथ हमारे जो संबंध है ये संबंध को जान लेना, यही बात को रख करके सारे शास्त्रों ने बताया गया। तो यहाँ पर तो हर यही संबंध को जानने के लिए, जब तक ये संबंध को उत्पन्न करने के लिए, जब तक हमें और ये संबंध शरणागति से उत्पन्न होती है, ये संबंध शरणागति से उत्पन्न होती है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस शरणागति का 6 लक्षण बताते हैं, सबको पता होगा। तो 6 लक्षण क्या है, अनुकूल भक्ति के लिए जो हमें सपोर्ट करती है जो चीजें उनको हमें ले लेना है, और जो हमें नेगेटिव भगवान के और धक्का लगाती है, भगवान के और मिलने के लिए रुकावट उत्पन्न करती है, वो चीजों को छोड़ देना। वो कोई भी होना को, कुछ भी चीज होना को, यदि हमें भगवान के भक्ति के बाधक बनता है वो चीज, कोई भी हमारा खास क्यों भी होना, तो वो चीज को हमें बकवास ऐसे समझना है, ये वो तो बहुत बड़ी ऐसी चीज है, तो उसको छोड़ देना। और भगवान के, ये दूसरा है। तीसरा, भगवान के संरक्षण के ऊपर दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। और चौथा, भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित रहना चाहिए। पांच वाला कि हमें भगवान की इच्छा को छोड़कर भक्तों का और पृथक इच्छा कोई नहीं होना चाहिए। छह वाला, भगवान अपने को हमेशा विनीत और अकिंचन मानना चाहिए। ये छह सूत्र ये छह शरणागति का जो छह नियम है, ये नियम के द्वारा हम यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चित सफलता भक्ति मार्ग में सफलता को प्राप्त करेंगे। यही बात को ध्यान रखते हुए श्रील सनातन गोस्वामी ना सनातन गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु को शरण लेकर के ये पहले उनका प्रश्न था कि ये अमी मैं कौन हूं, अरे जारे के ने तापत्र मेरे ऊपर इतने दुख क्यों, इतने मेरे जीवन के ऊपर इतने दुख क्यों आ रहे हैं बताओ। तो उसका जवाब देते हुए चैतन्य चैतन्य महाप्रभु सारे कितना लंबी, ये दो ही क्वेश्चन प्रश्न दो है, कितना छोटी क्वेश्चन, प्रश्न बहुत छोटा के अमी जारे के ने तापत्र है, ये बहुत छोटे प्रश्न है लेकिन उनका जवाब कितने विस्तार है, उनका जितना गाएंगे वो खत्म नहीं होगा, असरंती है के अमारे के ने तापत्र। ये प्रश्न का जवाब देते हुए चैतन्य महाप्रभु वो गाते गए, वो गाए गाए वो गाने का कोई खत्म नहीं हुआ, वो गाए और यही बद्ध जीव का यही मनुष्य जीवन का शुरुआत है ब्रह्म जिज्ञासा, धर्म का शुरुआत ब्रह्म जिज्ञासा से शुरू होती है। धर्म का सिद्धांत तो क्या है उसका जवाब 12 लोग देते हैं, आप लोग सुने स्वयंवर शंभु कपिल मनु ये जो 12 महाजन है, धर्म का सिद्धांत तो क्या है उसका जवाब किसके पास है ना, ये 12 लोगों के पास। और प्रहलाद बताते हैं धर्म क्या है, धर्म वो है जो भगवत के शरण में जाना सिखाता है, भागवत धर्म ये वास्तविक धर्म है। प्रहलाद महाराज बताते हैं भागवत धर्म जो है वो ही असल धर्म है, असली धर्म क्या है भागवत धर्म। और ये भागवत धर्म का शुरुआत कहां से होती है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण अर्चन वंदन दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। प्रहलाद महाराज बताते हैं भागवत धर्म का शुरुआत कहां से होती है ना, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण अर्चन वंदन दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, यहां से भागवत धर्म का शुरू होती है ये प्रहलाद महाराज बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति यही भागवत धर्म का अनुसरण करता है तो पशु जीवन से बच जाता है। और कलिजुग में कलिजुग में भागवत धर्म का अनुसरण करना बड़े ही मार्ग बड़ा सहज बना दिया गया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम यही भागवत धर्म है। और यदि कोई व्यक्ति ये भागवत धर्म का अनुसरण करता है और ये कलिजुग में हरे कृष्ण महामंत्र यदि कोई भी व्यक्ति उच्चारण करता है वो शुद्ध हो जाता है और पशु जीवन के जाने से वो बच जाता है। यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र या भागवत धर्म अनुसरण नहीं करता तो निश्चित रूप से पशु जोनी में चला जाता है, चाहे व्यक्ति कोई भी धर्म हो या कोई भी जाति में हो, या वो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो या क्या है भाई हो शूद्र हो ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ सन्यास जो भी कोई जाति कोई आश्रम में हो उसमें अपने अपने जगह में रह करके यदि वो अपने नियत कर्तव्य को निभाता है वो सिद्धि बनता है, अपने चेतना में वो सिद्ध बन सकता है, अपने चेतना को भागवत धर्म के अनुसरण करने का क्या है, अपने चेतना को संस्कार करना, अपने भीतर जो अपने को अपने चेतना को परिवर्तन कर बदलना, जो भौतिक चेतना को उसको बदलना है एक संस्कार लाना है, यही भागवत धर्म का उद्देश्य है। तो कोई जाति कोई आश्रम में रहे और इसमें ऐसा कोई व्यक्ति को सोचना नहीं चाहिए कि ये तो वानप्रस्थ है ब्रह्मचारी है सन्यासी है ये मार्ग उनके लिए आसान है हम तो गृह है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। इसमें बड़े उदास होकर के युधिष्ठिर महाराज पूछ दिए नारद मुनि जी को, बताइए आप तो थोड़ा बता दीजिए ये कैसे हैं, हम तो गृहस्थ जीवन में हो करके बड़े मूर्ख बन चुके हैं, उसका फिर कैसे है सदगति, क्या है कैसे होगा सदगति कैसे होगा, हाँ, तो उसका जवाब देते हुए नारद मुनि जी बताते हैं, हाँ चिंता नहीं करो, आप सुरक्षित हो क्योंकि आप सारा परिवार भक्त बन चुके। ये नारद मुनि का जवाब है, युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न है और ये नारद मुनि का जवाब है। गृहस्थ जीवन में सुरक्षित, गृहस्थ जीवन को सुरक्षा का मतलब सुरक्षा कब क्या है ना, सारा परिवार भक्त बन जाना, ये स्वयं नारद मुनि कहते हैं। स्वयं नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं चिंता नहीं करो, हाँ क्योंकि आप सुरक्षित हो, क्योंकि आप सारा परिवार भक्त बन चुके हो। और यहाँ पर गृहस्थों को युधिष्ठिर महाराज का अनुकरण करना चाहिए। और ये संसार के सबको छोड़कर भगवान के शरण में जाना, यही ही धर्म की सिद्धांत, भगवान के शरण में जाना यही ही वास्तविक धर्म सिखाता। धर्म क्या सिखाता है? भगवान के शरण में जाना। सर्वात्मा क्या है श्लोक, देवर्षि भूतात्मनुणाम पितृणाम न किंकर नाम ऋणी च राजन सर्वात्मन शरण्यम से न सर्वात्मन शरण्यम शरण्यम गतम मुकुंद परिहृतकृतम। सब कुछ छोड़कर भगवान के शरण में शरण में चले जाना, यही एक मनुष्य का सबसे बड़ी पुरुषार्थ है। एक मनुष्य जीवन का सबसे बड़ी पुरुषार्थ क्या है? भगवान के चरण को मान लेना, भगवान ने जो कहा है भगवान के प्रस्ताव में राजी हो जाना, यही ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ी बात है। तो ये विषय को लेकर भक्ति विनोद ठाकुर जी एक पद गाते हैं, क्या है ना, हरि हरि विफल जन्म गुआइनु मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु। मनुष्य जीवन होने के बाद यदि आध्यात्मिक अनुशीलन नहीं करता है तो बहुत बड़ी चांस को खोता है, बहुत बड़ा मौका को मिस करता है। खास करके ये संसार में जो लोग होते हैं, कुछ मोहक बात को सुनना और मोहक बात के ऊपर सोचना उनका बहुत बड़ी खूबी है, उनका बहुत बड़ा आदत है। कुछ ऐसे बातों के ऊपर सुनना, बात को सुनना उनका बहुत बड़ी गलत आदत है। यदि हमें देखते हैं ये सारा संसार मृत्यु की ओर बह जा रही है, फिर भी हम सोचते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरा जीवन में ये सब चीजें नहीं होने वाली है। और ये बातों के ऊपर युधिष्ठिर महाराज बड़े ताजुब हो जाते हैं, बड़े ताजुब होकर के, बड़े चकित होकर के अपने पिताजी को बताते हैं, अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम त्रिसस्तावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। इससे बढ़कर के आश्चर्य क्या है, क्या हो सकता है? हम देखते हैं लोग इतने मूर्ख बन चुके हैं, इतने आत्मघाती हैं लोग, वर्तमान के लोग इतने मूर्ख हैं, इतने आत्मघाती हैं, अपने सर के ऊपर पृथ्वी को खड़े होते हुए देख करके भी वो इनकार कर देते हैं। अपने मृत्यु सर के ऊपर मृत्यु को खड़े होते हुए भी वो चीज को पहचान नहीं पाते। और अगले जीवन का तैयारी करने के बजाय वो अल्पकालीन जो जीवन मिला है, ये अल्पकालीन जीवन का दुरुपयोग करते हैं। उससे बड़े ये बद्ध जीव का बहुत बड़ा भूल है। ये बद्ध जीव की साधारण चीज है, वो इसी जीवन में वो इस संसार को भोग करना चाहता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि धार्मिक सिद्धांत, अपने प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बताते हैं धार्मिक सिद्धांतों का अभिप्राय क्या है ना, भगवान के धर्म का सिद्धांतों को मानने का अभिप्राय है ना, भगवान की आशीर्वाद को प्राप्त करना, भगवान का कृपा को प्राप्त करना, ये धार्मिक सिद्धांतों का अभिप्राय है। और धर्म की सिद्धांत कहाँ बताया गया है, कहाँ कहा गया है ना, भगवद गीता में भगवान कहाँ कहे हैं ना, भगवद गीता में भगवान का जो कहना है वो भगवद गीता में हमें सुन सकते हैं, जान सकते हैं। और भगवान भगवद गीता में एक जगह में एक सिद्धांत तो बताते हैं, एक उपदेश कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मो भक्तिया प्रयच्छति, यदि उसके साथ हमारा श्रद्धा ऐड है, यदि वो दिया हुआ चीजों के पीछे हमारा प्रीति, हमारा जो प्रेम है वो चीज को जोड़े हैं, तो भगवान हमारा दिया हुआ छोटे चीज को विदुर रे घरे कृष्ण करील भोजन, विदुर के घर में जाकर के वो खा लेते हैं,
दुर्योधन का कई प्रकार का आइटम को छोड़कर भगवान विदुर के कुटिया में चले जाते हैं वो चीज को ग्रहण करने के लिए। विदुरे घरे कृष्ण करी लघु जन, भगवान यहाँ पर वचन देते हैं, भगवान यहाँ पर हमारे साथ एक वादा करते हैं, यदि प्रेम के साथ मेरे प्रति कोई चीज कोई व्यक्ति देता है तो मैं इस चीज को ले लेता हूँ। तो भगवान ऐसे क्यों कहते हैं? क्या भगवान अपने भक्तों के भेंट पर आश्रित है? वास्तव में वो किसी के चीज के पर आश्रित नहीं है हाँ, लेकिन भगवान अपने भक्तों के ऊपर आश्रित रहना पसंद करते हैं, यही उनकी कृपा है हाँ। और ये जो भौतिक जगत है, भौतिक सृष्टि है, ये जो भौतिक प्रकाश है, ये भगवान का तेज का एक स्पुलिंग है। हम देखते हैं इस संसार में कोई व्यक्ति ज्ञानी है, कोई व्यक्ति ध्यान योगी ना बहुत बड़ा ज्ञानी है और बहुत सुंदर है, बहुत शक्तिशाली है। यदि कोई ये संसार में कोई व्यक्ति की भीतर कुछ ऐश्वर्य को हमें देखते हैं तो ये किसका शक्ति है? ये भगवान का विभूति है, भगवान का ऐश्वर्य है हाँ। हम देखते हैं ये संसार के भीतर कोई व्यक्ति बड़े ही अद्भुत से अद्भुत कार्य कर लेता है और एक व्यक्ति कर नहीं पाता है। अतएव यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए भगवान कौन सा भक्तों का कितना पक्ष ग्रहण किया है, उनका द्वारा संपन्न कार्य से हाँ वो बात को हमें आंक सकते हैं। इस अपने कार्य से हमें ये चीजों को ठौर सकते हैं कि भगवान कौन व्यक्ति का कितना पक्ष लिया है। ऐसे तो भगवान समदर्शी है, लेकिन इंद्रस्य अर्थस्य कथम दैत्यम अवधूतन, लेकिन इंद्र का पक्ष करने के लिए ये तो बड़े ये बात युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर देते हैं, इंद्र को पक्ष देने के लिए ये असुरों को क्यों मारते हैं? यहाँ पर भगवान किसी का पक्ष नहीं करते, लेकिन भगवान जे जथा मान, ये फॉर्मूला को यदि हमें देखेंगे तो फिर यहाँ पर पक्ष अपक्ष की बात का जो सवाल है वो मीमांसा है वो समाधान हो जाती है। तो इसलिए भगवान के बताते हैं कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, जो व्यक्ति प्रीतिपूर्वक मेरे में लगा हुआ है, मेरे में है हाँ, तो फिर मैं उसको ऐसे बुद्धि प्रदान करता हूँ जो जिसके द्वारा वो मेरे पास लौट सके, मेरे पास पहुंचे, मेरे पास आ जा। तो शास्त्र की जो उपदेश है वो सबके लिए है, लेकिन ये शास्त्र के उपदेश से हाँ यदि हम शास्त्र का उपदेश को मानते हैं तो उपदेश में जो शक्ति है वो शक्ति को हम अनुभव कर सकते हैं। यदि उपदेश को नहीं मानते तो फिर इसमें से वंचित हो सकते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बात को बताते हैं, जब गुरु के द्वारा शिक्षक के द्वारा दिया हुआ शिक्षा को जब छात्र हाँ अमल करता है, मान लेता है, तो फिर हाँ वो शिक्षा का कुछ सार्थकता रहती है। जब शिक्षक के द्वारा बताई गई विद्या को पाठ को जब शिष्य नहीं लेता है तो फिर वो विद्या में पाठ में वो अग्रगति प्रगति नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान और कोई जीव को वो भक्ति योग प्रदान करने के लिए तैयार है, लेकिन जीवों में ये समर्थ होनी चाहिए वो चीज को ग्रहण करने का, जीवों के भीतर ये सामर्थ्य होनी चाहिए, ये शक्ति होनी चाहिए वो चीजों को लेने का, है ना। तो परमात्मा सारे जीवों के अंतकरण में स्थित है, भगवद गीता में ये पुष्टि हुई है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, प्रत्येक के हृदय में स्थित होने के कारण ईश्वर हर एक को उसके क्षमता के अनुसार उसको उपदेश प्रदान करते हैं हाँ, वो जीव को उपदेश प्रदान करते हैं उसकी क्षमता के अनुसार हाँ। भगवद गीता के उपदेश सबके लिए खुली हुई है, लेकिन एक उपदेश को कुछ पढ़ करके भगवान को समझ सकते हैं और कुछ ऐसे बैढ़ंगपन से समझ करके भगवान का अस्तित्व को नकार सकते हैं, भगवान को नहीं समझ पाते। यदि वो भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, इसके बाद भी हमें हमारा अयोग्यता और अक्षमता के कारण वो चीज को हमें समझ नहीं पाते। ये तमो और रजोगुण के कारण से बात होती है, किंतु अर्जुन जैसे प्रगतिशील भक्त जब वो ये बात को श्रवण करता है तो फिर वो भगवान का गुणगान करता है, परम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान, कृष्ण सबके लिए प्रकट है, लेकिन किंतु यहाँ पर कृष्ण को धारण करने की, समझने की शक्ति हमारे भीतर होनी आवश्यक है। कृष्ण सबके लिए समभाव रखते हैं, लेकिन कृष्ण कृपा को ग्रहण करने की अनुसार हमें कृष्ण भावनामृतों में प्रगति करते हैं। कृष्ण कृपा को ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार हमें कृष्ण भावनामृतों में प्रगति कर सकते हैं। यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी एक बात बताते हैं, आकाश में अनेक तारे हैं, रात्रि में अंधकार में चंद्र जो चांद है वो प्रकाशित होता है। रात्रि है, अंधेरा है, लेकिन इसके बाद भी जो चंद्र है चांद है वो प्रकाशित होता है। यदि हम जानते हैं सूर्य एक प्रकाशमान ज्वलमान पिंड है, लेकिन वो तेजी तेजियान पिंड को जब बादल छा देता है तो उनका जो स्वरूप है, उनका जो तेज है, अद्भुत तेज है, बहुत प्रकाशित है। ये प्रकाश, ये जो प्रकाश बादल में आच्छादित होने के कारण वो प्रकाश दृष्टिगोचर नहीं हो पाती है। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा जेहू जेहू वो तमो रजोगुण में आच्छादित हो जाता है, उनके जो स्वरूप ज्ञान है, उनकी जो शक्ति का प्रभाव है वो बाहर विकिरण नहीं हो पाती है। लेकिन जेहू जेहू वो सत्वगुण में होता है तो फिर वो भगवान की कृपा का महसूस कर पाता है। आध्यात्मिक ज्ञान को जो दिव्यता जो गुह्य है, उनका आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान का जो रहस्य है वो उस चीज को अमल कर पाता है। यहाँ पर इस प्रकार प्रभुपाद जी हाँ ये बातों को समझाते हाँ। और इसी प्रकार भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए गुरु और कृष्ण की कृपा आवश्यक होती है। ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पतित जीवात्मा माया में होकर ये संसारी भौतिक जगत में इधर उधर भ्रमण करता है, किंतु भाग्यवश यदि वह कोई प्रामाणिक प्रतिनिधि मिल जाता है तो उसे भक्ति का बीज प्रदान करता है। और यदि वो जीव ऐसे गुरु और ईश्वर का प्रतिनिधि का लाभ उठाता है तो फिर वो भक्ति लता बीज यानी कि वो भक्ति का बीज को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर ये बात सामने दिख पड़ती है, यदि कोई उचित रूप से कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे वो धीरे धीरे आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर यह बात चरम ये निष्कर्ष के रूप में निकलती है, यहाँ पर यह बात सामने आती है आती है कृष्ण भावनामृत में हमें कृष्ण भावनामृत को जितने गंभीर के साथ हमें लेंगे तो हमें इस चीज को जल्दी से जल्दी हमें समझ सकते हैं। अंतिम रूप में ये बात को हमें कहेंगे समग्र संतप्त समाज को यहाँ पर यही चेतावनी दिया जाती है तो भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करें। अब भगवान भी अंतिम उपदेश के रूप में यही बात बताते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें सारे डराव से छुड़ा लूंगा, लेकिन यही बुद्धि करो मेरे मां आ जाओ, मेरे शरण को मान लो, मैं तुम्हें सारे डराव से छुड़ा लूंगा। अरे सारे समग्र समाज को भगवान श्री कृष्ण को चाहिए, समग्र समाज को चाहिए कि वो भगवान श्री कृष्ण का ये घोषणा का लाभ उठाए। एक काल चक्र के द्वारा कुचल जाने के भय से कृष्ण के द्वारा रक्षित हो जाए, ये समाज में संसार में बद्ध जीवात्मा पिसा जाता है। और ये दशा से अपने को बचाने के लिए और भगवान श्री कृष्ण के शरण में चला जाए क्योंकि जब तक हमें भगवान श्री कृष्ण के शरण में नहीं जाते हैं हमें बच ही नहीं सकते। जिस प्रकार सरकार एक अपराधी व्यक्ति को पकड़कर उनको जेल में कारागार में बंदी बनाकर दंड देती है और वो सरकार चाहे तो वो जीव को वो बंदी जीवन से मुक्त करा सकता है। अंतिम रूप से हमें यही बात को यहाँ पर देख लेना, वर्तमान स्थिति में जो दुखमय अवस्था हमें प्राप्त हुई है जो कष्टमय अवस्था में अभी मिली हुई है वो भगवान के द्वारा नियत किया गया है। यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति एक कष्ट जीवन से उबना चाहता है, एक कष्ट जीवन से कष्टमय परिस्थिति से बाहर छूट जाना चले जाना चाहता है, वो नियंता को निवेदन करना चाहिए, तभी जाके भगवान हमारा निवेदन को श्रवण सुन करके हमें ये भौतिक उलझन से, ये भौतिक अवस्था से हमें पार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें भगवान आज के श्लोकों के द्वारा हमें एक ज्ञान प्राप्त करना है, ये संसार में एक व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए, ये संसार में मनुष्य को एक व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए, ये एक व्यक्ति को पता लगाने लेना चाहिए, ये संसार की जो ऐश्वर्य है, किसी का प्रभाव है, किसी का जो चीज है, वो चीजों को महत्व ज्यादा देना ही चाहिए। आप लोग जाने होंगे नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर, अलेक्जेंड्रा कितने बड़े बड़े थे, ये लोग अंत होते हुए ही उनका लोकप्रियता, उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। और प्रहलाद महाराज भी अपने पिताजी का, अपने महान पिताजी का कार्यकलाप देख करके वो बात को अनुभव कर लिया, सीख लिया। इसलिए प्रहलाद महाराज ये संसार की कोई वस्तु को महत्व नहीं दिया, चाहे कि व्यक्ति यहाँ अपने शरीर को कितने बनाए रखना चाहिए, अपने ऐश्वर्य को, आजकल के जो फिल्म एक्टर एक्ट्रेस जो होते हैं, जैसी चमड़ी के ऊपर थोड़ा सा कुछ दाग आ जाता है कि कुछ आ जाता है ना, वो चिंतित हो जाता है। चाहे आज पहले समय में हम देखें, बचपन के समय में देखते हैं अमिताभ बच्चन कितना सुंदर था, लेकिन आज उसको एक कुत्ता भी नहीं देखेगा तो वो श्रीदेव हो या कोई भी हो, कोई भी हो, लेकिन अपने जो भौतिक ऐश्वर्य है, भौतिक बनावट है, वो सदैव बनाए नहीं रख सकता। ये प्रकृति का नेचर है, ये प्रकृति का लॉ है, ये भौतिक स्थिति को हमें कितने भी कोशिश करें वो सदा सदा के लिए बना नहीं रह सकता। इस बात के ऊपर एक भक्त को, वैष्णव ये बात को समझता है, इसीलिए भौतिक चीजों के ऊपर ज्यादा उनका जोर नहीं देता। और ऐसे तो सारे शास्त्रों का आवाज है, सारे शास्त्रों की हुंकार है, प्रयास करना है, आध्यात्मिक प्रयास करना है। यही बात को एक सत्संग में यदि हमें ये एक ही बात प्रयास करना है तो क्या चीज के लिए प्रयास करना है ना, आध्यात्मिक चीज के लिए। यही चीज को प्रयास करते हुए यदि हमें सारा जीवन को लगाए तो फिर अंत में सिद्धि हमारे हाथ में है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। एनी क्वेश्चन या कमेंट, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कमेंट। धन्यवाद। श्री लंग बाबा देखी जय जयपुर जमानंदे।